जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे इंसान की जिसने मतलब शाब्दिक रूप से मृत्यु को ही हैक कर लिया है। एक ऐसा क्रूर तानाशाह जिसने ऐसे अचूक नियम बना दिए हैं कि उसे मारना नामुमकिन हो गया है।
बिल्कुल नामुमकिन।
हाँ, न कोई इंसान उसे मार सकता है, न कोई जानवर, न दिन के उजाले में उसकी जान जा सकती है, न रात के अंधेरे में,
और ना ही घर के अंदर या बाहर।
बिल्कुल, उसने सत्ता और खौफ का एक ऐसा जाल बुना है कि पूरी दुनिया उसके सामने घुटने टेक चुकी है।
उसे लगने लगता है कि वो ब्रह्मांड का भगवान है।
सही कहा। और फिर उसके इस अजय और खौफनाक साम्राज्य को चुनौती मिलती है। किसी विशाल सेना से नहीं, किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से भी नहीं, बल्कि उसी के घर में पल रहे एक 7 साल के बच्चे से।
क्या बात है।
जिसके पास न कोई हथियार है, न कोई डर, बस एक शांत सी मुस्कान है।
और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यही वो पल होता है जब सत्ता का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर अहंकार ताश के पत्तों की तरह कांपने लगता है।
हाँ,
क्योंकि जिस चीज का डरा नहीं सकते ना, उसे आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते।
ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
बिल्कुल।
आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो नोट्स और स्रोत हैं, उनका मुख्य विषय है प्रहलाद की अडिग आस्था, या जैसे हम अनशेकेबल फेथ कहते हैं।
बहुत ही दिलचस्प विषय है।
तो हमारा आज का मिशन इस बात की गहराई में जाना है कि कैसे एक सच्ची, शांत और अडिग आस्था दुनिया की सबसे बड़ी अजय लगने वाली ताकतों को भी पूरी तरह से पंगु बना सकती है।
हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है।
और ये केवल इतिहास या कोई पौराणिक कथाओं का पुराना पन्ना नहीं है। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि ये कहानी भीड़ से अलग खड़े होने, या कहें कि ऑथेंटिकली यू बने रहने की एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शिका है।
सही बात है।
खासकर तब जब पूरी दुनिया एक खास सांचे में ढलने का दबाव डाल रही हो।
बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि सत्ता और ताकत हमेशा भौतिक होती हैं, मतलब जैसे पैसा हो गया।
हाँ, पैसा या सेना।
सेना या आज के समय में तकनीक। लेकिन प्रहलाद और राजा हिरण्यकशिपु की ये कहानी हमें सत्ता के बिल्कुल एक नए आयाम से परिचित कराती है। ये हमें दिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई मैदानों में नहीं लड़ी जाती,
तो कहाँ लड़ी जाती है?
वो मन और चेतना के स्तर पर लड़ी जाती है।
बहुत खूब। तो कहानी के आधार से शुरू करते हैं। श्रोत बताते हैं कि प्रहलाद का पिता राजा हिरण्यकशिपु कोई आम राजा नहीं था।
बिल्कुल नहीं।
वो चरम स्तर का तानाशाह था। मतलब उसका अहंकार इतना विशाल था कि
उसने खुद देवताओं को चकमा दे दिया था।
हाँ, उसे पूरी तरह से भ्रम हो गया था कि वो अजय हैं और ब्रह्मांड का केंद्र वही है। उसका एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त आदेश था कि उसके राज्य में हर कोई, हर एक इंसान केवल उसी की पूजा करेगा।
और अगर कोई नहीं करता तो?
अगर कोई उसकी सत्ता पर सवाल उठाने की सोचता भी था ना, तो उसे तुरंत कुचल दिया जाता था।
यहां सबसे आकर्षक बात यह है कि ऐसे तानाशाहों की मानसिकता कैसी होती है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है।
डरा हुआ मतलब राजा हिरण्यकशिपु डरा हुआ था?
बिल्कुल। उसे सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं चाहिए होता, उसे लोगों के दिमाग और उनकी आत्मा पर पूरा नियंत्रण चाहिए होता है। हिरण्यकशिपु को केवल टैक्स या जमीन नहीं चाहिए थी, उसे ये विश्वास चाहिए था कि लोग उसे अपना भगवान माने।
मतलब एक तरह का गॉड कॉम्प्लेक्स।
एकदम सही शब्द है, गॉड कॉम्प्लेक्स। जब तक हर एक व्यक्ति उसके सामने नहीं झुकता, उसे अपनी सत्ता अधूरी ही लगती है।
और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई।
वो कैसे?
क्योंकि महल के ठीक अंदर उसके अपने ही परिवार में एक ऐसा इंसान था जो इन सब चीजों से बिल्कुल बेपरवाह था।
उसका अपना बेटा?
हाँ, प्रहलाद। प्रहलाद को सत्ता के इन हिंसक खेलों में, इस शक्ति प्रदर्शन में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसका दृढ़ विश्वास था कि एक सर्वोच्च सत्ता है जिसे वो विष्णु कहता था, और वो सत्ता हर जगह मौजूद है।
हर जगह?
हाँ,
महल की दीवारों में, इंसानों में, खंभों में, और या तो की हवा में भी।
एक तानाशाह के लिए इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं हो सकता।
सच में
सोचिए ना, एक पिता जो पूरी दुनिया से अपनी पूजा करवा रहा है,
हाँ?
वो अपने ही घर में अपने ही बच्चे से वो सम्मान नहीं पा पा रहा।
क्या विडंबना है।
प्रहलाद का ये सोचना कि सर्वोच्च सत्ता कोई और है और वो राजा से बहुत बड़ी है, हिरण्यकशिपु के उस अजय होने के भ्रम पर एक सीधा मनोवैज्ञानिक प्रहार था।
इस स्थिति को आज के संदर्भ में समझने के लिए मेरी एक एनालॉजी सुनिए।
हाँ, बिल्कुल।
कल्पना कीजिए एक ऐसे मतलब आधुनिक तानाशाह या टेक बिलियनेयर की, जिसने पूरी दुनिया के वाईफाई और सूचना नेटवर्क पर अपना एकाधिकार कर लिया है।
अच्छा, मान लिया।
वो चाहता है कि हर एक डेटा, हर एक सोच केवल उसके बनाए गए सर्वर से होकर गुजरे।
पूरा कंट्रोल।
हाँ, उसे लगता है कि उसने सब कुछ हैक कर लिया है। लेकिन अचानक?
अचानक क्या? अचानक उसे पता चलता है कि उसके अपने ही घर में किसी के पास एक ऐसा डायरेक्ट अनहैकेबल सैटेलाइट कनेक्शन है जिसे ना तो वो ट्रैक कर सकता है,
ना हैक कर सकता है,
और ना ही बंद कर सकता है।
अरे वाह, ये तुलना बिल्कुल सटीक है,
है ना?
वो जो अनहैकेबल कनेक्शन है ना, वही प्रहलाद की आस्था थी। हिरण्यकश्यपु के लिए प्रहलाद की ये आस्था कोई सामान्य पूजा पाठ या मासूम बचपन का खेल नहीं था।
तो वो क्या था?
ये उसकी उस परम सत्ता के खिलाफ एक पूर्ण और खुला वैचारिक विद्रोह था।
अच्छा।
एक तानाशाह को अपने आसपास अंधे आज्ञा पालन की जरूरत होती है। वो चाहता है कि लोग उसके डर से कांपे।
लेकिन प्रहलाद तो कांप नहीं रहा था।
बिल्कुल नहीं। प्रहलाद ना तो डरा हुआ था, ना ही गुस्से में था। वो पूरी तरह से शांत था। और ये शांति ही सबसे बड़ी बगावत थी।
लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती है।
क्या?
जब किसी राज्य में इतनी तानाशाही हो तो सबसे पहला कदम होता है प्रोपेगेंडा और माइंड कंट्रोल, है ना?
हाँ, बिल्कुल होता है।
स्रोत भी ये बताते हैं कि राजा ने अपने सबसे बेहतरीन शिक्षकों को प्रहलाद को मतलब ब्रेन वॉश करने के काम पर लगा दिया था। उसे दिन रात ये सिखाया जाने लगा कि बेटा, इस दुनिया में अर्थ और काम यानी पैसा और सत्ता ही सबसे बड़ी सच्चाई है,
यही जीवन का उद्देश्य है, ऐसा बताया गया।
हाँ।
और ये बहुत स्वाभाविक भी है। जब सत्ता किसी विद्रोही विचार को देखती है ना, तो वो सबसे पहले उसे सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है।
हाँ, मतलब उसे करप्ट करने की कोशिश।
बिल्कुल।
वे चाहते थे कि प्रहलाद भी उसी दौड़ का हिस्सा बन जाए जिसमें बाकी दुनिया भाग रही थी।
पर प्रहलाद ने बहुत ही विनम्रता से ये सब सुना और फिर वापस अपनी उसी बात पर आ गया कि वो जो हर जगह है वही सर्वोच्च है।
अब मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहता हूँ और इस बात को चुनौती देना चाहता हूँ।
अच्छा,
बताइए।
क्या ये सच में संभव है? मतलब एक 7 साल का बच्चा,
हाँ,
जिसे राजमहल की हर सुख सुविधा मिल रही हो,
हाँ, जिसके आसपास राज्य के सबसे चतुर और चालाक शिक्षक हों, जो उसे लालच और डर दोनों दिखा रहे हों, क्या ये केवल एक बच्चे की जिद नहीं लगती?
हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ।
कोई इतनी आसानी से इतने बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव को कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या ये कहानी को थोड़ा मतलब अवास्तविक नहीं बनाता?
आपका ये संशय बहुत ही तार्किक है। अगर हम इसे एक सामान्य बच्चे की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल अवास्तविक लगता है।
वही तो,
हम सभी जानते हैं कि बच्चे कितनी जल्दी माहौल के प्रभाव में आ जाते हैं।
लेकिन
लेकिन क्या?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें और उन स्रोतों की गहराई में जाएं, तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा मिलती है।
कौन सी अवधारणा?
प्रहलाद की आस्था कोई अंधा विश्वास या ब्लाइंड फेथ नहीं थी।
अच्छा?
उसने किसी किताब में पढ़कर यह नहीं मान लिया था कि भगवान हर जगह है।
तो फिर क्या था?
स्रोत इसे एक्सपीरियंशियल नोइंग या अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं।
अनुभवजन्य ज्ञान?
हाँ। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या ऐसा कि उसने कोई जादू देख लिया था?
नहीं, जादू नहीं। इसे ऐसे समझिए, दो तरह के ज्ञान होते हैं।
ठीक है।
एक वो जो आपको बताया जाता है, जैसे आग गर्म होती है। आप इसे मान लेते हैं क्योंकि आपको पढ़ाया गया है। लेकिन दूसरा ज्ञान तब आता है जब आप गलती से आग को छू लेते हैं। वो जो जानना है ना, वो अनुभवजन्य ज्ञान है।
समझ गया।
प्रहलाद उस सच्चाई को केवल बुद्धि के स्तर पर नहीं समझ रहा था, वो उसे जी रहा था। वो ये महसूस कर पा रहा था कि पूरा ब्रह्मांड, हर एक कण एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से आपस में जुड़ा हुआ है।
और जब आपको ये अनुभव हो जाए?
बिल्कुल। जब आप उस सार्वभौमिक जुड़ाव को महसूस कर लेते हैं, जब वो आपका अनुभव बन जाता है, तो कोई भी शिक्षक या कोई भी राजा आपको ये सिखा नहीं सकता कि सच क्या है।
ओहो, अब मुझे बात समझ आ रही है।
हाँ,
मतलब अगर आप सच में किसी चीज को अनुभव कर चुके हैं तो वो आपकी धारणा नहीं रहती, वो आपका यथार्थ बन जाती है, आपकी रियलिटी बन जाती है।
एकदम सही।
ऐसे में राजा के शिक्षक प्रहलाद से ये कह रहे थे कि देखो, आसमान हरा है, जबकि प्रहलाद खुद आसमान को नीला देख पा रहा था।
क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है।
तो वो जिद नहीं कर रहा था, वो बस एक स्पष्ट सच बयान कर रहा था जिसे बाकी लोग अपने लालच के कारण देख नहीं पा रहे थे।
बिल्कुल। और यही कारण है कि बाहरी दबाव उस पर बेअसर था। लेकिन जाहिर है, हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को ये दार्शनिक या आध्यात्मिक बात समझ नहीं आने वाली थी।
हाँ, तानाशाहों को ये सब कहाँ समझ आता है।
सही कहा। जब एक तानाशाह तर्कों, लालच और वैचारिक स्तर पर पूरी तरह से हार जाता है, तो उसके पास केवल एक ही हथियार बचता है,
और वो है हिंसा और क्रूरता।
जी हाँ।
और यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। स्रोत बताते हैं कि जब राजा अपने ही बेटे का ब्रेन वॉश नहीं कर पाया, तो यातनाओं का एक भयानक दौर शुरू हुआ।
बहुत भयानक।
उसने प्रहलाद को जहर दिलवाया उसने उसे आग में जिंदा जलाने की कोशिश की।
उफ।
पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया और यहाँ तक कि उसे ऊंची चट्टानों से नीचे भी फेंक दिया गया।
ये सुनना बहुत विचलित करने वाला है,
बहुत ज्यादा।
लेकिन हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को सिर्फ मारना नहीं चाहता था।
अच्छा।
हाँ, अगर उसे सिर्फ मारना होता तो वो एक पल में तलवार से उसका सिर काट सकता था। वो इतनी लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया से क्यों गुजरा?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वो ऐसा क्यों कर रहा था?
क्योंकि वो प्रहलाद की आत्मा और उसकी उस अडिग आस्था को कुचलना चाहता था। ये शारीरिक दंड से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था।
मतलब वो उसे तोड़ना चाहता था।
बिल्कुल। राजा को प्रहलाद की मौत से ज्यादा प्रहलाद के मुंह से ये सुनना था कि मैं हार गया, आप ही भगवान है। वो साबित करना चाहता था कि मृत्यु के डर और अत्यधिक शारीरिक पीड़ा के सामने बड़ी से बड़ी आस्था घुटने टेक देती है।
लेकिन प्रहलाद नहीं टूटा।
नहीं टूटा।
अधिकांश लोग दर्द और मृत्यु के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन प्रहलाद के टिके रहने का कारण वही अनुभवजन्य ज्ञान था जिसके बारे में आपने अभी बताया।
जी।
स्रोत भी इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि प्रहलाद के लिए विष्णु कोई आसमान में बादलों के ऊपर बैठा दुरस्त नायक नहीं था,
जो उसे बचाने के लिए नीचे आने वाला था। ऐसा नहीं था।
हाँ, ऐसा नहीं था। विष्णु उसके लिए जीवन का ही मूल सार था। वो ऊर्जा जो उसके भीतर भी थी और उस जहर या उस आग के भीतर भी।
और यही वो दर्शन है जो उसे अजेय बनाता है।
कैसे?
अगर जीवन हर जगह है, अगर वो चेतना कण-कण में है, तो उसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? हिरण्यकशिपु एक शरीर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रहलाद उस शरीर से बहुत आगे उस अमर चेतना के साथ एक हो चुका था।
क्या बात है।
मृत्यु का खौफ केवल उस इंसान को डरा सकता है जो खुद को केवल हार्ड मास का शरीर मानता हो।
यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे हम एक और एनालॉजी से समझ सकते हैं।
हाँ, बताइए।
जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई को इतनी गहराई से जान लेता है तो उस पर बाहरी धमकियों का असर बिल्कुल वैसा होता है जैसे कोई गुस्से में आकर पानी को हथौड़े से पीटने की कोशिश कर रहा हो।
पानी को हथौड़े से?
हाँ।
सोचिए, एक इंसान है जो पूरी ताकत से एक तालाब के पानी पर हथौड़ा मार रहा है। वो पानी पर कितनी भी जोर से वार करे, पानी को कोई नुकसान नहीं होता।
बिल्कुल नहीं होता।
पानी बस थोड़ा सा हटता है, हथौड़े को जगह देता है और फिर से एक हो जाता है।
हाँ।
अंत में क्या होता है? पानी नहीं टूटता, बल्कि वो हथौड़ा मारने वाला ही अपनी पूरी ऊर्जा खत्म करके हताश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण है।
है ना?
हिरण्यकश्यपु की स्थिति बिल्कुल उस हथौड़ा मारने वाले इंसान की तरह हो गई थी। उसकी सारी शक्ति, सारी सेनाएं और उसका वो पहाड़ जैसा अहंकार प्रहलाद के आस्था रूपी पानी पर कोई असर नहीं डाल पा रहा था।
और जब सत्ता काम नहीं करती
तो जो हताशा पैदा होती है वो इंसान को पागलपन के चरम बिंदु तक ले जाती है।
और वो चरम बिंदु था इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स।
हाँ।
अंतिम टकराव। स्रोत के दस्तावेज में इस दृश्य का बहुत ही नाटकीय वर्णन है। निराश, पूरी तरह से हताश और अपने अहंकार में अंधा हो चुका हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को बालों से पकड़कर दरबार के एक विशाल पत्थर के खंभे के पास खींच लाता है।
सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सोचिए, पूरे दरबार में सन्नाटा है, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। राजा गुस्से से दहाड़ते हुए पूछता है, कहां है तुम्हारा भगवान अब? क्या वो इस बेजान पत्थर के खंभे में भी है? और प्रहलाद, जिसके चेहरे पर दर्द या डर की कोई लकीर नहीं है, जो उसी शांत अवस्था में है, वो बिल्कुल सहजता से जवाब देता है, हाँ, वो यहां है।
उफ।
ये सुनकर पिता के गुस्से की कोई सीमा नहीं रहती और वो अपनी पूरी ताकत से, अपने सारे अहंकार के साथ उस पत्थर के खंभे पर एक जोरदार प्रहार करता है।
और ठीक इसी क्षण भौतिकता के सारे नियम, ब्रह्मांड के सारे समीकरण हमेशा के लिए बदल जाते हैं।
बिल्कुल बदल जाते हैं।
जैसे ही खंभा टूटता है, स्रोतों के अनुसार उसके भीतर से एक अविश्वसनीय रूप प्रकट होता है, नरसिंह।
नरसिंह?
हाँ, एक ऐसा रूप जो आधा शेर और आधा इंसान है।
अब ये कोई साधारण चमत्कार या जादू नहीं था।
तो क्या था?
ये बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया रूप था।
अच्छा।
हाँ, अगर हम उन इनविंसिबिलिटी रूल्स या अजय होने के नियमों को याद करें जो राजा ने खुद के लिए बनाए थे।
हाँ, जो हमने शुरुआत में बात की थी।
दस्तावेज बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि नरसिंह का वो रूप ना तो पूरी तरह से इंसान था, ना ही पूरी तरह से जानवर। जब उन्होंने राजा को पकड़ा तो वो ना घर के अंदर का हिस्सा था ना बाहर का, वो चौखट थी।
क्या बात है।
समय ना दिन का था ना रात का, वो गोधूली या शाम का वक्त था।
हाँ।
और उन्होंने उसे ना जमीन पर मारा ना आसमान में, बल्कि अपनी जांघों पर रखकर।
ये घटना सत्ता के अहंकार पर ब्रह्मांड का सबसे सटीक और करारा जवाब है।
बिल्कुल,
ये ब्रह्मांड का सत्ता की चालाकी को हैक करना था।
हैक करना, सही कहा।
हिरण्यकशिपु ने प्रकृति के नियमों को बांधने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि अगर वो कुछ तकनीकी खामियों या लूप होल्स को बंद कर देगा तो वो मृत्यु को हरा देगा।
लेकिन वो गलत था,
बहुत गलत। लेकिन नरसिंह का रूप ये साबित करता है कि जब सत्य अपने पूर्ण और उग्र रूप में प्रकट होता है तो वो आपके बुने हुए नियमों के भीतर जाकर ही आपको हरा देता है।
वाह।
ब्रह्मांड ये बता रहा था कि तुम्हारे बनाए हुए कृत्रिम नियम और अहंकार की सीमाएं अनंत जीवन की संभावनाओं के आगे कुछ भी नहीं है।
तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
हम
इस गहरी चर्चा के अंतिम चरण में हैं, तो इस पूरी कहानी से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है,
आप बताइए।
मेरे हिसाब से इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये किसी शारीरिक युद्ध की नहीं बल्कि प्रहलाद की उस अडिग आस्था की चरम जीत थी।
बिल्कुल।
आस्था ने शाब्दिक रूप से वास्तविकता को यानी रियलिटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया था।
हाँ।
प्रहलाद की उस शांत स्थिर सच्चाई ने सत्ता के घमंड को उसी के बनाए हुए बेहद चालाक नियमों के भीतर जाकर पूरी तरह से नेस्तनाबूत कर दिया था।
बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रहलाद ने इस लड़ाई में कभी हाथ नहीं उठाया,
एक बार भी नहीं।
उसने कोई सेना नहीं बनाई, उसने ये ऐतिहासिक और ब्रह्मांडीय जीत केवल एक चीज से हासिल की, अपनी सच्चाई को छोड़ने से इनकार करके। उसका वो इनकार ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया था।
और यही हमारी आज की इस चर्चा की मुख्य सीख है, द बिग लेसन।
जी,
ये कहानी केवल पुराने चमत्कारों की नहीं है, और ना ही ये सिर्फ इसलिए है कि हम इसे सुनकर भूल जाएं।
हाँ?
ये सिखाती है कि जब कोई इंसान सिर्फ किसी सच्चाई के बारे में सोचता नहीं है, सिर्फ उस पर बड़ी बड़ी बहसें नहीं करता, बल्कि अपनी सच्चाई को पूरी प्रामाणिकता के साथ जीता है,
हाँ?
तो उसके भीतर एक ऐसी अजेय ऊर्जा आ जाती है जिसे कोई भारी ताकत, कोई भी बॉस, कोई भी समाज का नियम हरा नहीं सकता।
बिल्कुल सही कहा।
ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है, वो ऊर्जा हमेशा हमारे आसपास मौजूद है, और वो वास्तविक अडिग विश्वास का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है।
और इस पूरी घटना और सत्ता बनाम आस्था के इस ऐतिहासिक टकराव को देखते हुए इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है।
कौन सा सवाल?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आज गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे प्रहलाद की उस अडिग और पूर्ण आस्था ने एक कठोर बेजान पत्थर के खंभे के भीतर से साक्षात जीवन और अकल्पनीय शक्ति को प्रकट कर दिया।
हाँ, बिल्कुल।
तो ये सोचने वाली बात है, हमारे आज के आधुनिक समाज में, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से कठोर और निर्जीव खंभे खड़े हैं?
आप किन खंभों की बात कर रही हैं?
ये खंभे सत्ता के वे पुराने और भ्रष्ट ढांचे हो सकते हैं जो हमें दबाते हैं।
अच्छा।
ये सदियों से चले आ रहे वे रूढ़िवादी नियम हो सकते हैं जो हमें अपनी सच्चाई जीने से रोकते हैं।
बिल्कुल।
या फिर ये कॉरपोरेट दुनिया या समाज द्वारा हम पर थोपी गई वे खोखली विचारधाराएं हो सकती हैं जो हमें मशीन बना रही हैं।
सही बात है।
सवाल ये है कि अगर आज इन आधुनिक और अजय लगने वाले खंभों को एक पूर्ण प्रामाणिक और अडिग सत्य की चुनौती मिले तो क्या वे भी दरक सकते हैं?
क्या बात है।
और क्या उनके दरकने से, उनके टूटने से हमारे समाज में एक पूरी तरह से नई न्यायपूर्ण और अप्रत्याशित वास्तविकता जन्म ले सकती है? ये एक ऐसा विषय है जिसे हम यहीं छोड़ते हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के उन खंभों को पहचान सके।
बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है।
जी,
जब सच्चाई अपने पूरे जोर से किसी ढांचे से टकराती है तो बदलाव निश्चित है।
बिल्कुल निश्चित है।
आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
शुक्रिया।
ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं और अपनी खुद की सच्चाई की खोज करते रहिए।